आज दुनिया में वह समय आ गया है जब पुण्य कर्म की परिभाषा सबसे अधिक विकृत कर दी गई है। कुछ लोग मानते हैं कि पुण्य कर्म वह है जो दूसरों के भौतिक उत्थान के लिए किए जाए, जैसे कि फकीर को धन, कपड़ा या भोजन देना पुण्य का काम है, कुछ के लिए अनाथ बच्चों को अपना लेना, फिर कोई के लिए किसी वृद्ध व्यक्ति या हैंडीकैप व्यक्ति को सहारा दे देना इत्यादि। उपरोक्त सभी कर्तव्य अवश्य ही श्रेष्ठ कर्म है, परंतु पुण्य कर्म उसे कहा जाता है जिसका फल अविनाशी हो, सदा के लिए हो, अल्पकाल का न हो और जिससे देने वाले और लेने वाले दोनों की उन्नति हो। एक जीवन में अगर कोई बहुत दान धर्म का कार्य करता है तो वह अवश्य ही अगले जन्म में साहूकार बनता है। अगर कोई स्कूल कॉलेज बनवाता है तो अगले जन्म में अवश्य ही विद्यावान बनता है। अगर कोई अस्पताल बनवाता है तो अगले जन्म में अवश्य ही निरोगी तन प्राप्त करता है। परंतु हर फल सिर्फ एक जन्म के लिए ही कार्य करता है। पुण्य कर्म की पहचान हम दो बातों से कर सकते हैं। एक तो यह कि पुण्य कर्म वह है जो हमें जन्म जन्मांतर के लिए सद्गति प्राप्त करवाता है। दूसरा यह कि पुण्य कर्म का प्रत्यक्ष फल बेहद की खुशी और अतीन्द्रिय सुख है। पुण्य कर्म करने वाली आत्मा सदा नम्रचित्त होती है, उसमें अपने द्वारा किए गए पुण्य कर्म का जरा भी अहंकार नहीं होता और न ही वह किसी से वर्णन ही करती है। और एक बात, जिनके प्रति हम कोई श्रेष्ठ कर्म करें और उनसे रिटर्न में कोई इच्छा न रखें, ऐसा कर्म भी पुण्य कर्म है। सबसे बड़ा पुण्य का काम है किसी निराश, हतोत्साहित, होपलेस आत्मा में होप और आशा की किरण भर देना, उस आत्मा को जीवन पर्यंत एक श्रेष्ठ दिशा दे देना, किसी में ज्ञान रोशनी भरकर उनके मानसिक अंधकार को हटा देना, स्वयं के उदाहरण द्वारा दूसरों में गुणों और शक्तियों का संचार करना, सर्व के प्रति सदा शुभ भावना, शुभ कामना और रहम का भाव रखना, ये सभी वास्तव में पुण्य कर्म हैं, जिन्हें करके हम पुण्यात्मा बनते हैं।
प्रभु तुम्हरी गतमत तुम ही जानो, प्रभु आपकी लीला अप्रम अपार है। ईश्वरीय स्नेह में पलने वाली आत्मा के मुख से प्रभु स्तुति के ये बोल अक्सर ही सुनाई देते हैं। वास्तव में सत्य तो यह है कि मनुष्य आत्मा स्वयं ही स्वयं का मित्र व शत्रु बनती है अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर। मनुष्य आत्मा में इतनी शक्ति है जो वह चाहे तो अपना जीवन संवार ले या फिर बिगाड़ ले। यूं तो कर्म करने की स्वतंत्रता या फ्री विल मनुष्य के पास है, परंतु क्रूशल बात तो यह है कि अगर हमें उचित और श्रेष्ठ कर्म करने का ज्ञान नहीं है तो यह कर्म करने की फ्री विल जो हमारे पास है इसमें हम भ्रष्ट हो जाते हैं। आइए कर्मों की गति के विषय पर चल रहे हमारे धारावाहिक प्रवचन श्रृंखला में आज गतांग से आगे ब्रह्म कुमारी उषा बहन जी के अलौकिक विचार सुनते हैं।
प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वहाँ पर आयुष्य 100 साल से नीचे हो जाते, 80-90, और वो भी अकाले। कोई जन्म थोड़ा ज्यादा जी लिया तो दूसरे जन्म में कम भी हो सकता था। तो इस प्रकार का हमारा द्वापर युग के 21 जन्म हम पूरे करते हैं। उसके बाद कलयुग आता है। अब क्या होता है, कलयुग के अंदर तो खाता हमारा खाली हो गया, तो उधारी चालू किया, दूसरों के साथ हमने अकाउंट जोड़ना चालू किया और इसलिए कर्जा बढ़ता गया आत्मा के ऊपर। कला एकदम कम हो जाती है, एक दो कला रह जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है किसी व्यक्ति के अंदर 99 अवगुण हो लेकिन एक तो गुण होगा कि नहीं होगा। तो 16 कला संपूर्ण स्थिति से एक दो कलाधारी हम बन जाते हैं। एक दो कलाधारी अर्थात एक या दो गुण रह गए, इतनी बैटरी डिस्चार्ज हो गई हमारी। और पाप कर्म बढ़ते गए, अकाले मृत्यु बढ़ती गई, तो जन्म बढ़ गए आयुष्य कम हो गई, जन्म बढ़ गए 42 जन्म हो गए, आयुष्य कम हो गई 50-60 साल की आयुष्य, और इससे भी कम अभी तो देखते हैं 30-40 साल की एवरेज आयुष्य होती है ना। पाप कर्म बढ़ते गए अर्थात जाने अनजाने पन में भी पाप कर्म बहुत हो गए। अब जान के तो पता है कि मैंने झूठ बोला या किसको दुख दिया ये पाप कर्म किया, लेकिन अनजाने पन के पाप कर्म कौन से हुए? अनजाने पन के पाप कर्म है कि मान लो कि मैं रास्ते जा रही हूँ और किसी भिखारी को मैं देखती हूँ, मैं उसको 10 रुपया दान करती हूँ, सोचती हूँ मेरा पुण्य जमा हुआ, ये सोचकर मैंने 10 रुपया दान किया। जरूरी नहीं है कि वो पुण्य के खाते में जमा होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो आत्मा उस 10 रुपया को कैसे यूज करती है। मान लो कि उसने उस 10 रुपये से चाकू खरीदा और किसी का खून किया, तो उसने जो पाप कर्म किया उसकी भागीदारी मेरे साथ हो गई, क्योंकि मैंने दिया तब उसने किया, अगर मैं देती नहीं थी तो वो करता ही नहीं था। तो वो पाप कर्म का बोझ किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर आया। ये है अनजाने पन में किया गया पाप कर्म। इसीलिए तो कहा जाता है कि कलयुग के अंदर दान करो तो भी पात्र को देख कर दान करो, कुपात्र को दान नहीं करो जिसका बोझ अपने सिर पर चढ़े। तो ये है कि अनजाने पन में किया गया पाप कर्म, जहाँ दूसरे आत्माओं के साथ हमारी भागीदारी जुड़ जाती है, और कई बार तो भागीदारी खाली दो के बीच में नहीं होती है, 10-12 के बीच में भी हो जाती है। मान लो कि आज किसी व्यक्ति ने किसी जानवर का को मारा, अब मारा उसने, उसके बाद वो जानवर को ला करके बाजार में बेचा, किसी दुकान वाले ने खरीद लिया उसका मांस, तो जितना उसने मारने का पाप किया उसकी भागीदारी वो दुकान वाले के साथ हो गई। जब दुकान वाले ने बेचा किसी गृहस्थ को, अब वो बहन लेकर के खरीद करके गई तो वो भी भागीदारी हो गई। उसने पकाया घर में ले जाकर के उसकी बहू ने पकाया तो वो भी भागीदार हो गई। उसने पकाया खाने वाला भी भागीदार हो गया। तो कर्म एक का, एक जानवर को मारने का, लेकिन मारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, खाने वाला सब भागीदार हो गए एक कर्म। तो इसलिए जाने अनजाने पन में जो भागीदारी में किए गए पाप कर्म है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए कहा जाता कि कलयुग के अंदर पाप कर्म का हिसाब किताब भी समझ में नहीं आता है, और इतनी ज्यादा अगर एक आत्मा के साथ हमारी भागीदारी होती है ना तो भी हिसाब तो भोगना ही पड़ता है। मान लो कि हम ट्रेन में जा रहे हैं, किसी के बाजू में जाकर के बैठे हैं, अब कोई आया, देखा ये व्यक्ति बैठा है, उसको मारने के लिए, उसको पकड़ के लिए, उसके बाजू में हम बैठे थे, हमको समझ लिया हम भी उसके साथ है तो हमको भी साथ में ले गए, खूब मारा पीटा, कोई ने हमारी सुना नहीं, हम उसके साथ नहीं है और हमको समझ में नहीं आता है क्यों हमको इसके साथ पीटा जा रहा है, लेकिन जो भागीदारी में कर्म था तो भोगना तो बराबर की भोगनी पड़ेगी या नहीं? इसलिए भागीदारी में भोगना भी भोगनी पड़ती है। तो कहने का भावार कि जो कर्म करते हैं उसकी भोगना भी भागीदारी में ही मनुष्य जन्म में रह करके ही हमें भोगनी पड़ती है। जब मनुष्य जन्म में ही उसको भोगना है तो कभी कभी तो मनुष्य जन्म जानवर से भी बदतर हो जाता है, कि जानवर भी आज अच्छे घरों के अंदर जो पालतू कुत्ते हैं वो भी दूध मक्खन ब्रेड खाते हैं, लेकिन मनुष्य देखो किचड़े के डब्बे से उठा उठा करके खा रहे और उसके परिवार वाले उसके साथ की भागीदारी में है, वो भी वही खा रहे हैं। तो कहने का भावार्थ भागीदारी वाला हिसाब है। इसलिए कहा जाता है कि कलयुग के अंदर जो कर्म करो वो सोच समझ के कर, कहीं वो पाप के खाते में अनजानेपन में तो नहीं चला जा रहा। इसलिए दान करो तो भी पात्र को देख के दान करो, नहीं तो नहीं दान करना ज्यादा बेहतर है। भोगना इकट्ठी भोगने के बजाय तो नहीं दान करो, वो ज्यादा बेहतर है। और उसके बाद ये कलयुग जब पूरा होने को आया, सतयुग जब आरंभ होने को है, तो दो युगों के बीच का समय जिसको कहते हैं संगम युग, कि जहां दो युगों का संगम है, कलयुग और सतयुग का संगम है, जहां आत्मा का परमात्मा के साथ संगम होता है, और इस संगम में जो हमें परमात्मा से ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान से जब हमारी कॉन्शियसनेस चेंज होती है और हम सोल कॉन्शियस बन करके जो कर्म करते हैं वो श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं, तो ये जन्म एक है। इसलिए सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, 20 जन्म, द्वापर युग के 21 जन्म, और हम माना 41 हो गया, और 42 जन्म है कलयुग के, 42 जन्म आयुष्य 50 साल या 30-40 साल के अंदर, वो भी अकाली मृत्यु वाली। इसलिए 42 जन्म ऐसे मिलाकर 82 जन्म हुआ, और 84वां जन्म जिसको कहा अनमोल जन्म, ये संगम युग का है, जिस युग में हमको पूरा ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मिलता है, समय की गुह्य गति का ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान जब प्राप्त हुआ आदि मध्य अंत का, इस ज्ञान के आधार पर जो हमारा एक नया जन्म है, जिस जन्म को कहते हैं एक दिव्य जन्म, क्योंकि जहां परमात्मा ज्ञान से हमारा जन्म हुआ है, और ये जन्म इतना श्रेष्ठ जन्म है, और उस ज्ञान के आधार पर किया गया कर्म वो भी बहुत श्रेष्ठ है, कि जिस श्रेष्ठ बीज जो हम ये एक जन्म में बीज बोते हैं उसका फल 83 जन्म तक खाते हैं। जैसे कहा ना, एक बीज बो, आम का बीज बो, हजारों फल मिलते हैं, हजारों फल को भोगते हैं, उसमें कुछ फल सड़े हुए भी होते हैं, कुछ फल कीड़े वाले भी होते हैं, और कुछ फल तो बहुत अच्छे होते हैं। तो सतयुग त्रेता के जो फल थे हमने खाए 20 जन्म, बहुत अच्छे थे, और ये जन्म का भी अच्छा। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा वही जो अपने 21 कुल का उद्धार करे, ये कुल का और भविष्य 20 कुल का, तो 21 कुल का जो उद्धार करे वो है श्रेष्ठ आत्मा। तो ये जन्म में हम ऐसा कर्म करें जो 21 पीढ़ी हमारी तर जाए, ये एक जन्म की और 20 जन्म की, और 21 जन्म हम स्वर्ग के सुख के फल को भोगे। इसलिए कहा हर सीजन में वो फल देता है, लेकिन जैसे जैसे अगर वृक्ष को कीड़ा लग जाए तो फल में भी कीड़े आने लगते, तो द्वापर के बाद क्या हुआ, कीड़े लगने चालू हो गए, 5 विकारों के कीड़े लगना चालू हो गए। तो धीरे धीरे कलयुग के अंदर तो कैसा फल मिलता है, सड़ा हुआ फल मिलता है, कीड़े वाले फल मिलते हैं, ये भोगना भोगते। अब फिर सीजन आई, किसान होते हैं ना, सीजन को देखते हैं कि सीजन में बीज बोना चाहिए, तो भगवान भी हमें कहते हैं ये सीजन है, फिर से ये श्रेष्ठ जन्म आ गया संगम युग का, जहां आप पुरुष में से उत्तम पुरुष बन सकते हैं, नर से सो नारायण, नारी से सो श्री लक्ष्मी समान बन सकते हैं। तो इसलिए ये पुरुषोत्तम युग के अंदर जब श्रेष्ठ जन्म है हमारा, तो ये है सीजन बीज बोने की। अगर ये सीजन में बीज अच्छे कर्म का बो लिया तो पूरे 83 जन्म हमारे सफल हो गए। इसलिए अब के समय के महत्व को पहचानो और बीज बोना आरंभ करो। कई बार कई लोग हमें पूछते हैं, बहन जी इस जन्म में इस दुनिया के अंदर हम कई लोगों को देखते हैं जो बेईमानी करते वो तो मौज मजा करते हैं, और जो ईमानदारी से जीवन जी रहे हैं वो धक्के खाते हैं, वो पीटे जाते हैं, उसको सहन करना पड़ता। तो भगवान के घर में भी अन्याय है क्या? अन्याय की बात नहीं है। एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक बार दो व्यक्ति रास्ते से जा रहे थे, एक बड़ा बेईमान था एक ईमानदार था, दोनों रास्ते से जा रहे थे पैदल। अब चलते चलते क्या हुआ कि रास्ते के बीच में एक पर्स पड़ा था, तो जो बेईमान था ना उसने पर्स उठा लिया, देखा उसमें 1000 रुपए पड़े, खुश हो गया। वो ईमानदार को कहता है, चलो हम बांट लेते आधा आधा, तुम किसी को बताना नहीं। अब जो ईमानदार था उसने कहा, देखो भाई ये जिसका गिरा होगा, हो सकता है आज उसका पगार हुआ हो और वो घर ले जा रहा था गिर गया, अगर उसको वापस मिल जाए तो कितनी दुआ देगा, तो क्यों ना हम उसको दे देते हैं। उसने पुलिस में कंप्लेन तो लिखाई होगी, हम पुलिस में देके आते हैं ताकि उसको मिल जाएगा तो वो खुश हो जाएगा। तो वो बेईमान कहता है, देखो उसके नसीब में अगर होता था ना तो गिरता ही नहीं था, और उसके नसीब में नहीं था इसलिए गिर गया, और उसके जाने के बाद और किसी को मिला नहीं, हमें ही मिला, माना ये हमारे नसीब का है, हम चोरी करने तो नहीं गए ना, इसलिए इसको प्रसाद समझ के स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें क्या पता अगर पुलिस वाले में देके आए जब उसके नसीब में ही नहीं है पुलिस वाला खा जाएगा। तो इसलिए अगर तुम्हें नहीं चाहिए कोई हर्जा नहीं, मैं संपूर्ण रख लूंगा, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि भाई मिला है सहज रीति से तो ये अपने नसीब का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ईमानदार क्या कहता था, ठीक है दोनों आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो जो ईमानदार था उसको बड़ा जोर का पैर में कांटा चुभा, खून निकलने लगा। तो वो बेईमान कहता है, बड़ी ईमानदारी की बातें करता था ना यही फल मिलता है, बेईमानी से जियो तो पर्स मिलेगा। तो क्या कहेंगे उसको, यही दुनिया में हो रहा है, जो ईमानदारी से जी रहा है उसको कांटे चुभ रहे हैं।
आध्यात्मिक जीवन उसे कहा जाता है जिसमें आत्मा सदा ही स्वचिंतन और प्रभु चिंतन में मगन रहती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारियों का त्याग करना होता है, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि जो जितना आध्यात्मिक वृत्ति वाला होता है वो उतना ही घर देश समाज और विश्व के लिए उपयोगी साबित होता है, क्योंकि योग का अभ्यास कर्मों में कुशलता लाता है। आज के राज्य कमेंट्री में हम बेहद के वैराग्य का अनुभव करेंगे, ऐसा वैराग्य जिसमें हमें घर बार संबंध देह व पद पोजीशन का त्याग नहीं करना है, परंतु इन साधनों का उपयोग करते हुए भी इनसे अनासक्त होना है, जैसे कि कमल का फूल जो कीचड़ में रहकर भी सदा न्यारा और प्यारा होता है। सत्य पिता।